ओम शांति। तो आज आप हम सभी आने वाले कल की मुरली को रिवाइज करेंगे। मुरली की डेट है 5/8/18 और उसकी ओरिजिनल डेट है 7/12/83। मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली, मुरली मुरली पर ही है। और विशेष टॉपिक है कि मुरली का चिंतन कैसे करें। तो हम सभी जानते हैं कि चिंतन करना एक बहुत ही श्रेष्ठ कला है जो हरेक को आनी चाहिए, हरेक में होती भी है, क्योंकि चिंतन के माध्यम से ही हम किसी भी बात के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, कोई भी टॉपिक है, कोई मेथड है, उसके बारे में हम उसकी गहराई तक जा सकते हैं, उसका जो अंत है उस अंत को पा सकते हैं, उसकी जो खूबियां हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम जान सकते हैं, उनको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। चिंतन के बिना हम किसी बात को स्वीकार करते हैं और उसको यदि जीवन में हम अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर बात के बारे में चिंतन करना जरूरी है। तो हम मुरली का चिंतन कैसे करें, यह टॉपिक है। तो मुरली जो है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे जीवन के लिए, और हम उसको जीवन के हर क्षेत्र में चिंतन के माध्यम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं भोजन का, कि किसी के सामने बहुत ही वैरायटी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन हो, अनेक प्रकार के उसमें व्यंजन हो, तो यदि कोई उसको देखता है या किसी को पता पड़ता है कि आज ऐसा ऐसा भोजन बना हुआ है, तो उसको सुन करके या देख करके खुशी होगी, उसके मुख में पानी भी आएगा, लेकिन उससे ताकत मिले वो जरूरी नहीं, और वो खुशी भी टेम्परेरी होगी, स्थायी नहीं होगी। यदि व्यक्ति उस भोजन को स्वीकार करता है और उसका डाइजेशन सिस्टम यदि स्ट्रांग नहीं है, तो भी उस भोजन से जो उसको शक्ति मिलनी चाहिए थी वो शक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते इसी प्रकार से जो मुरली है वो आपके लिए आपके बुद्धि का भोजन है, खुराक है। तो हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं तो उससे हमें खुशी तो होती है कि मुरली में ये जो पॉइंट्स थे, लेकिन यदि हमने उन मुरली के पॉइंट्स को चिंतन में नहीं लाया, उस पर हमने विचार नहीं किया, उस पॉइंट्स के हम आदि मध्य अंत के बारे में हमने नहीं सोचा, तो उस पॉइंट से या उस मुरली से जो हमें ताकत मिलनी चाहिए थी वो ताकत नहीं मिलेगी। और यदि हमें उससे ताकत नहीं मिलेगी तो हम जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जीवन में आने वाली कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, कोई भी कारण है, हम उस समय सफल नहीं होंगे, असफल रहेंगे। तो इसलिए जो मुरली है उस पर हमें चिंतन करना है, हर प्रकार से चिंतन करना है कि मुरली में बाबा ने जो कहा है वो क्यों कहा, उसका क्या भावार्थ है, उससे क्या फायदा है, उसको हम जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसको हर एंगल से चिंतन करना है। चिंतन करेंगे तभी उसको हम जीवन में धारण कर सकेंगे और उसको हम आगे अप्लाई कर सकेंगे। तो पहली बात है कि मुरली जो वो हमारे लिए एक भोजन है, बुद्धि की खुराक है। दूसरी बात है कि मुरली हमारे लिए एक खान है, खजानों की खान है। जैसे किसी राजा के राज्य में कोई बहुत बड़ी खान हो, लेकिन उस खान से वो रत्नों को बाहर न निकाले, अपने कोष में न रखे, तो समय आने पर उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसको खुशी रहेगी कि हमारे राज्य में इस रत्न की खान है, चाहे हीरे की हो या अन्य कोई प्रकार की खान हो, तो उसको खुशी होगी, नशा भी रहेगा, लेकिन वो नशा और खुशी वो स्थायी नहीं होगी। यदि उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, अकाल पड़ता है या अन्य कोई समस्या आती है, तो उस समय जबकि उसको रत्नों की जरूरत है तो उसमें उसके वो काम में नहीं आएंगे, उसके राज्य में वो खान होने के बावजूद भी। यदि उसको जीवन में यदि उसने उसको पहले से खान से रतन निकाले होते, अपने कोष में रखा होता, तो समय पर उसको वो यूज कर सकता था। तो इसी प्रकार से जो मुरली है वो हमारे लिए रत्नों की खान है। बाबा कहते हैं मुरली में आपके जो मुरली में जो महावाक्य हैं वो एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है, हीरे से भी मूल्यवान है। तो मुरली में जो भी रत्न है, कोई हीरे के रूप में है, कोई मोती के रूप में है, कोई माणिक के रूप में है, कोई रूबी के रूप में है, तो उन रत्नों पर हमने यदि चिंतन किया होगा, उन रत्नों को हमने अपने जीवन में धारण किया होगा, हाँ चिंतन वही कि उनकी उनकी वैल्यू को समझना, उन पर डिस्कस करना, उस पर डिस्कस करना, उसको हर एंगल से देखना कि इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसको जीवन में अप्लाई करें, इसका क्या महत्व है, इसको हम चिंतन करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या इससे हमें फायदा मिल रहा है। तो उसको हमने यदि जीवन में चिंतन किया होगा, अपने में धारण किया होगा, तो जब भी कोई समस्या आएगी उस समस्या के समय हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि किसी के सामने, जैसे कि किसी के जीवन में या किसी के संबंधों में कोई बहुत बड़ी बीमारी आई किसी व्यक्ति के जीवन में और हमें उस समय लाखों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है और वो उस समय नहीं है लेकिन उसके पास रत्न है, तो उन रत्नों को व्यक्ति वो यूज करके उस बीमारी से मुक्ति पा सकता है, लेकिन उसके पास रत्न वो पहले से होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास अगर ज्ञान रत्नों का भंडार जो है उसको हमने जीवन में धारण किया होगा चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, उसके अनुभव के माध्यम से, तो जब भी कोई ऐसी समस्या जीवन में आती है शारीरिक मानसिक व्याधि के रूप में, हम उस समय उस पॉइंट को अप्लाई करके उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन जो है वो एक युद्ध के मैदान पर है, हम सभी युद्ध के मैदान पर हैं, योद्धे हैं। तो जैसे किसी योद्धे के पास सामने जो सेना है उससे लड़ने के लिए, सामने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो बाबा ने जो हमें मुरली दी हुई है उस मुरली में जो हमें सामान मिलते हैं, एक पावरफुल पॉइंट्स मिलते हैं, वो हमारे लिए शस्त्रों के रूप में है, अस्त्र शस्त्रों के रूप में है। लेकिन हमने उन शस्त्रों को हमने पहले से चिंतन किया होगा, सामान के जो सामान है, जो पावरफुल पॉइंट्स हैं, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, उसकी शक्ति का अनुभव किया होगा, अपने जीवन में पहले से अप्लाई किया होगा, उसका अनुभव किया होगा, तो समय आने पर हम उसको यूज कर सकते हैं और जो सामने शत्रु है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में कभी भी कहीं से भी किसी के भी द्वारा जो दुश्मन है वो वार कर सकता है, तो उस समय हमारे पास वो शस्त्र ऑलरेडी तैयार होने चाहिए, वो तैयार तब होंगे जब हमने उस पर पहले से मनन चिंतन किया होगा। तो इस प्रकार से मुरली पर हमने अगर चिंतन पहले से करेंगे, चिंतन किया होगा, तो समय पर हम उसको हर प्रकार से हर रीति से यूज कर सकते हैं। तो मुरली जो है वो हमारे लिए एक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो हम हर प्रकार से हर क्षेत्र में चिंतन के माध्यम से उसको यूज करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ये आने वाले संडे की मुरली पर कविता बनानी थी, सुनानी थी सर। तेरी मुरली की मस्ती में, तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद भूल जाता हूँ, तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद भूल जाता हूँ, कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन, कभी सतयुग में चला जाता हूँ। तेरी मुरली के साजों से अविनाशी दुआओं को पाता हूँ, तेरी मुरली के साजों से अविनाशी दुआओं को पाता हूँ, हो जाता तन मन दोनों दुरुस्त, बेपरवाह बादशाह बन जाता हूँ, बेपरवाह बादशाह बन जाता हूँ। बन के लाइट माइट हाउस, बन के लाइट माइट हाउस सुख की किरणें फैलाता हूँ, बन के लाइट माइट हाउस सुख की किरणें फैलाता हूँ, तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद भूल जाता हूँ, तन की सुदबुद भूल जाता हूँ। तेरी मुरली का एक एक बोल, तेरी मुरली का एक एक बोल पद्मों की कमाई कराता है, विधि पूर्वक सुन जो समाता है वह श्रेष्ठ गति को पाता है, वह श्रेष्ठ गति को पाता है। मुरली सुन सुनकर मुरली धर की, मुरली सुन सुनकर मुरलीधर की मैं अतीन्द्रिय सुख में खो जाता हूँ, मैं अतीन्द्रिय सुख में खो जाता हूँ। तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद्ध भूल जाता हूँ, तन की सुदबुद्ध भूल जाता हूँ। सिर्फ खाओ और हजम करो, सिर्फ खाओ और हजम करो तो लास्ट सो फास्ट जा सकते हो। गैलप कर समय की दूरी को श्रेष्ठ नंबर पा सकते हो। नशा चढ़ जाता जब मुरली का, नशा चढ़ जाता जब मुरली का तो देह से ऊपर उड़ जाता हूँ। तेरी मुरली की मस्ती में, तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद्ध भूल जाता हूँ। मुरली से मुरलीधर का रख रिगार्ड, मुरली से मुरलीधर का रख रिगार्ड, विधि से सिद्धि को पाता हूँ। रूहानी नशे में मस्त योगी बन मुरली का स्वरूप बन जाता हूँ, मुरली का स्वरूप बन जाता हूँ। रह मुरलीधर बाप के साथ, रह मुरलीधर बाप के साथ, अनुभवों में चला जाता हूँ। तेरी मुरली की मस्ती में तन की सुदबुद्ध भूल जाता हूँ, तन की सुदबुद्ध भूल जाता हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। 7/12/83 ये कल चलने वाली अव्यक्तवाणी है, उसके आधारित भाई साहब ने हमें होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 9 पर यह विस्तार करना है। तो क्वेश्चन था, प्रश्न था कि बाप दादा को यानी गांव वाले बच्चे को देखकर बहुत खुशी होती है, तो क्यों खुशी होती है? उसका आंसर में बाबा ने बताया है, क्यों खुश होते होंगे बाबा? हाँ, क्योंकि गांव वाले भोले होते हैं और बाबा भी भोला भंडारी है, और जैसे बाबा है भोले भंडारी है वैसे बच्चे भी है, इसके कारण बाबा देखकर बहुत खुश होते थे। तो अभी हम इस पर तीन बातों का ये करेंगे विस्तार। एक तो बाबा भोला भंडारी है, और दूसरा यानी बाबा बच्चे को क्यों भोले कहते हैं, और तीसरा बाबा ने गांव को याद किया है, तो गांव पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बाबा यानी भोला भंडारी क्यों है, क्योंकि बाबा क्या करते हैं यानी सभी आत्माओं को खुले दिल से जो भी देना है वो दे देती है, यानी आस भी नहीं रखते कि वो बच्चे रिटर्न में हमें कुछ यानी ईश्वरीय कार्य में सहयोग करे, ये भावना न रखते हुए दे देती है। तो ये सुन के कर्तव्य के कारण उसने वो पदवी हासिल की बाबा ने। और दूसरी बात है, अभी बाबा बच्चे को भोले क्यों कहते हैं, यानी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया वाले भोले को किसको भोले कहते हैं, कि जे बच्चे बुद्धू है या जिसको अंदर कोई होशियारी नहीं है उसको भोले कहते हैं। लेकिन बाबा की भाषा बहुत ऊंचे लेवल की है, बाबा जी बच्चे को देखते हैं तो भोले यानी जे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और जिनके दिल में कोई छल कपट नहीं रहता है या वो शुद्ध और साफ दिल रहता है उनका, तो इस भाषा से बाबा उनको याद करते हैं और वो भोले बोलते हैं। और तीसरी अभी बात है, गांव को याद किया बाबा ने, तो अपन गांव पर थोड़ा प्रकाश, यानी जो गांव है तो गांव को याद करने से क्या क्या आता है। तो अभी इस सभा में मेरे को ये देखना है कि आप गांव वाले कितने लोग बैठे यहाँ पर, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, क्योंकि वर्तमान समय गांव में रहते हैं, तो देखो आप कितने गांव वाले भाग्य से आए, लेकिन स्वयं भगवान जिसको देख करके खुश होते हैं। तो हमारे बॉम्बे सिटी है ना, गांव थोड़ी है, तो अपने लिए बाबा की तरफ से आप ताली बजा दो कि हम गांव के लोग कितने भाग्य से आए। तो अभी गांव याद करने से हमें क्या क्या याद आता है, इस पर थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे अपन। तो यानी गांव याद आने से क्या क्या याद आता है? गांव में तालाब होते हैं, और गांव में पशु होते हैं, सुविधा, कौन सी सुविधा? हाँ, शुद्ध हवा होती है गांव में, ताजी सब्जियां मिलती है, हाँ सूरज निकलने का दृश्य बहुत रमणीक होता है, देखते खुशी भी मिल जाती है, हरे हरे खेत होते हैं, वहाँ पर हाँ शांत वातावरण होता है, चारों ओर हरियाली होती है,
सब जनावर गांव बछड़े सब दिखते हैं। तो बहुत सारे आंसर आ गए। तो गांव याद आने से क्या होते, हरी भरी खेती याद आती है, वो गांव की जो मिट्टी है ना, मिट्टी की खुशबू भी याद आती है, और कोयल का कुकू आवाज भी बहुत अच्छा लगता है यानी सुनने में, वो भी आवाज याद आता है, और जो भोले भाले गांव वाले है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो आपस में प्यार से रहते, ये गांव वाले की विशेषता रहती है। और बाबा ने 83 के हिसाब से गांव ये किया है, 83 की वाणी है, तो अपन गांव वाले को 83 के पोजीशन के हिसाब से देखेंगे अभी, कि उस समय गांव की क्या स्थिति थी। अभी तो उतना गांव ये नहीं रहा है, मगर उस समय कैसा गांव था, तो उस समय जो भारत की आत्मा कहलाने वाले ग्रामवासी को यानी पूर्णता यानी शिक्षित नहीं थे वो लोग, यानी इतने एजुकेट नहीं थे, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे लेवल के थे। उसके जो जीवन का मूल्य है वो यानी अपन अक्षरों द्वारा लिख नहीं सकते या देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव द्वारा देख सकते, ये उनकी विशेषता थी। यानी विशेष विशेषता का कारण बाबा ने उसको पसंद किया है। तो कुछ विशेषता देखेंगे कि गांव वाले की जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी रहती थी उस समय, यानी वो एकतापूर्ण रहती थी, सब मिलजुल कर रहते थे गांव वाले, यानी कोई भी सुख है दुख है तो दुख में सबको सहभागी ये हो जाते थे, और वो स्नेह युक्त वातावरण से रहते थे, गांव का जो वातावरण है एक परिवार समझते थे और परिवार के हिसाब से रहते थे। और जो शिष्टाचार था, श्रेष्ठ शिष्टाचार था उनका, और जो वेशभूषा थी गांव वालों की एकदम सिंपल सादगी वाली थी, कि जैसे अभी सिटी की देखी जाए कितनी मॉडर्न है, उसी हिसाब से एकदम सिंपल थी। और जी हाँ, अभी तो वैसे फुल ड्रेस में रहती थी वो, यानी सिंपल जीव सिंपल ड्रेस में, यानी एक ये दिखता था यानी दिव्यता दिखती थी। हाँ, सिंपल लिव एंड हाई थिंकिंग बोलते हैं, यानी उच्च यानी रानी मान सिंपल, अब ये लेकिन उनकी विचार उच्च लेवल के विचार थे उनके, इस टाइप का उसका जीवन था। और जे भी महान आत्मा है या देव आत्मा ही है, उन्होंने भी क्या किया, यानी गांव के सानिध्य में यानी रहे वो लोग। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा बनने के पहले ब्रह्मा बाबा भी गांव में ही रहते थे। हाँ, सतयुग भी एक गांव भी होता है, हाँ इसलिए भारत को भी। और जैसा बापू गांधी जी के बारे में बताते कि उसका भी जो साबरमती आश्रम था वो भी एक नदी के किनारे पे थे, वो भी गांव में रहते थे। और कृष्ण के बारे में बताते कि शास्त्र में कि श्री कृष्ण भी गांव का छोरा था, यानी जो भी उनने लीला की थी वो गांव में ही की थी। और जैसा बाबा ने भी जो स्थान चुना है ये अपना माउंट आबू, ये भी गांव ही है, यानी गांव की इतनी जो भी महान आत्माएं देव आत्माएं समझो, यानी गांव के ही सान्निध्य में रही है या अपना जीवन बनाया है उन्होंने। और गांव की विशेषता क्या है, और उनका भोजन है समझो या वातावरण है, गांव का वातावरण शुद्ध सात्विक रहता है, क्योंकि उस वातावरण में जाने से ही अपने अंदर क्या होता है, एकदम शुद्ध विचार चलते मन में, इसलिए साधु संन्यासी भी उस सान्निध्य में उनने तपस्या की है। और भोजन भी शुद्ध शाकाहारी यानी भोजन था उस समय का लोग 83 के समय का, क्योंकि वो फलहार खाते थे, दूध पीते थे और शुद्ध सब्जियां खाते थे, यानी वो शुद्ध भोजन खाने के कारण बाबा बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो उसके विचार आचार व्यवहार भी श्रेष्ठ रहते थे उस समय। और वो कुएं का शुद्ध पानी पीते थे, और वो मेहनत भी बहुत करते थे, जो मेहनत करने के कारण जल्दी सोती थी, और शुद्ध वातावरण होने के कारण यानी मेहनत करने के कारण क्या होता था, उसका मन और तन भी मजबूत रहता था यानी स्वस्थ रहता था। जी हाँ, संपन्नता होती थी। और वो लोग क्या करते थे, बहुत यानी सुबह से लेकर रात तक खेती में मेहनत करते थे, उसी कारण उनको नींद भी बहुत अच्छी आती थी, और बाकी उनके पास समय भी नहीं, हर समय वो कार्य में बिजी रहते थे, तो दुनिया की जो उल्टी सुलटी बातें है इससे वो उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसे वंचित रहते थे। और तो मनोरंजन के कारण टेलीविजन भी नहीं था उस समय, तो इसकी वो बिजी रहते थे और अच्छे सत्संग करते थे उस समय वो लोग। और लास्ट के जो व्यवहार है उसके आर्थिक व्यवहार यानी ईमानदारी से और सच्चाई से करते थे, उसके अंदर ईमानदारी थी, ये गांव के लोग भी किसी को देते थे पैसे ईमानदारी से वापस करते थे। तो इन सारे बातों के कारण गांव वाले के उस समय भी जो उसके संस्कार थे ऊंचे लेवल के थे शहरीकरण के हिसाब से देखा जाए तो। और जब वो गांव वाले के पहले संस्कार ऊंचे थे और ऐसे ये भोले भाले बच्चे जब ज्ञान मार्ग में आ गए तो क्या हो गया, यानी पहले उनके संस्कार तो अच्छे ही थे, जैसे दूध में चीनी डाल दिया तो कितना ही होता है, तो वैसा उसके जीवन में श्रेष्ठता आ गई, यानी पहले थोड़ा जीवन श्रेष्ठ ही था, बाद में और श्रेष्ठ और महान बन गए। तो उसी कारण बाबा भी उन भोले बच्चे को बहुत पसंद करते, देखते बहुत खुश हो जाते हैं। तो और जैसे बाबा बोलते हैं वो भोले है, भोले यानी दुनिया वाले की जैसी होशियारी रहती है वैसी होशियारी उसमें नहीं रहती, यानी उसकी होशियारी कैसी, यानी निस्वार्थ भाव वाली होशियारी रहती है। तो जैसे गांव वाले अपने स्वार्थ के लिए कैसी होशियारी चलाते, इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा कि वो बता देता हूं मैं, कि एक माता थी, प्रसंग के बाद समाप्त कर देंगे क्योंकि वो माता थी, उसकी बहू है वो हर दिन थोड़ा ज्यादा ही भोजन बनाती थी, क्योंकि अचानक कोई मेहमान आ गया तो उसको और दोबारा भोजन बनाना पड़ता था, तो उस झंझट से मुक्त होने के लिए थोड़ी ज्यादा रोटी बना देती थी। तो हर दिन क्या होता था, वो रोटी बच जाती थी उसकी, तो बाद में वो बासी रोटी कौन खाएंगा तो फेंकना पड़ता था। तो फिर वो माता ने क्या युक्ति रची, कोई खा नहीं सकती है, तो उसने एक दिन परिवार वाले को बोला कि एक वैद्य डॉक्टर मेरे को मिला, उसने बोला बोले कि बासी रोटी खाने से क्या होता है, शुगर डाउन हो जाती है, और जिसको शुगर नहीं उसको लाइफ टाइम तक शुगर नहीं होंगी। तो ये युक्ति समझो, यानी उसने हुशियार से युक्ति प्रश्न छोड़ा दिया कि लोगों ने वो खानी चाहिए वह परिवार वाले ने, तो ये ऐसी हुशियारी गांव के भोले वाले बच्चों में नहीं रहती है। तो ये है। तो और बाबा भी भोले वाले माता को बहुत पसंद करते, भले भोली भाली रहती है, उनको यथार्थ रीति से ज्ञान भी समझ ही नहीं सकती वो माताएं, लेकिन भावना से बाबा को याद करती है वो माताएं, और सूक्ष्म होता परमधाम का भलाई अनुभव नहीं होता उनको, लेकिन भावना से बाबा को याद करके खुशी में रहती है। और जो भी आत्माएं आते हैं उनको ज्ञान ठीक से बताना भी नहीं आता, लेकिन उनको सेंटर तक पहुंचा देती है वो माता, और वो बहन उनका ठीक ठाक से कोर्स करा देती है, यानी इतनी शुभ भावना रहती है। तो ये सारे बातों देख करके बाबा भी गांव वालों को बहुत याद करते, पसंद करते हैं और खुश हो जाते हैं। अच्छा ओम शांति।
अच्छा निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले अनन्य रतन की सेवा क्या है? निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले अनन्य रत्नों की सेवा क्या है? अनन्य रत्नों की सेवा क्या है? निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले अनन्य रत्नों की सेवा क्या है? जो निमित्त बने हुए हैं वो सेवा कैसे करेंगे? नैनों से सेवा करेंगे, अपने चलन से सेवा करेंगे, और शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करेंगे, नजरों से निहाल करेंगे। वे लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे, एक अनेकों को लाइट देंगे, जैसे सैंपल एग्जांपल ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा थी, तो क्या करते थे, दादी जी थी, एक जगह बैठ करके जो भी आएंगे सिर्फ ऐसे करेंगे ठीक हो तो भी खुश हो जाते, स्थूल कारोबार से उपराम होते जाएंगे, इशारे से सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में। अभी जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर बढ़ेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वह बढ़ेगी। चक्रवर्ती महाराजा कौन बनते हैं उनकी निशानियां सुनाओ। चक्रवर्ती महाराजा कौन बनते हैं उनकी निशानियां सुनाओ। चक्रवर्ती महाराजा वह बनेंगे जो स्वदर्शन चक्रधारी होंगे, जो चारों तरफ सेवा करते होंगे, जैसे डॉक्टर साहब जो है पूरे विश्व में, जैसे अभी दादी जानकी जी गए हैं, नहीं, मनसा सेवा करेंगे, और तो पैसा खर्चा तो सब लोग नहीं कर सकते ना। जो अभी चक्रधारी है वही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। आपके लाइट का रूप और माइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाए जो चलते फिरते सबको दिखाई दे कि यह लाइट के ताजधारी है।
ओम शांति। कल चलने वाली अव्यक्त मुरली का प्रश्नोत्तर 3 नंबर का प्रश्न है, साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट्स के साथ साथ किस अनुभव में रहने से ही साक्षात्कार मुहूर्त बन सकेंगे? किस अनुभव में रहने से ही साक्षात्कार मुहूर्त बन सकेंगे? अभी हम पहले अभी का समय के देखते हैं। अभी जो मंदिर होते हैं, मंदिर में मूर्ति, जहां आप लोग सुनाऊंगा तिरुमला तिरुपति देवस्थान, वो मूर्ति को पूरा जब तक सजाएंगे नहीं तब तक वो पर्दा उठाएंगे नहीं। मूर्ति अधूरा सजे हुए होंगे तो वो देखने वाले भी कहेंगे ये क्या है। अर्थात हम पूरा साक्षात्कार मुहूर्त बनने के लिए हमारे अंदर अच्छी तरह से तैयारी होना चाहिए, अच्छी तरह से धारणाएं होना चाहिए। जैसा अभी आप शंकर पार्वती की कहानी सुनाऊंगा, जब शंकर पार्वती को विवाह करना था, मना निश्चित होता है विवाह करने के लिए, मगर पार्वती तब तक तैयार नहीं हुई थी क्योंकि पार्वती है देहधारी, शंकर है देव, ऐसा कहानी सुनाते हैं। उसमें पार्वती जब तक अपना पूरी तरह तैयार नहीं हो, मना हर प्रकार से तपस्या करके अपने अंदर की देवत्व पद प्राप्त ना करे, तब तक विवाह नहीं होता है। वास्तव में ये सब कहानियां कहाँ की है, इधर हम ब्राह्मणों की है। वो पद पाने के लिए हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाला है जो बाबा ने सुनाया, वो बाद में सुनाएंगे। स्वयं को साक्षात्कार मुहूर्त बनाने के लिए सर्वगुण सर्वशक्तियों से संपन्न बनना होगा या भरपूरता होना होगा। साकार बाप को यथार्थ फॉलो करेंगे तो साकार बाप समान साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएंगे। साकार बाप को यथार्थ फॉलो करेंगे तो जैसा बाप ब्रह्मा बाबा को आप लोग जब मुरली में आता है, कई बार मुरली में मेरे को याद है एक बार दादी प्रकाशमणि यहाँ ओम शांति भवन में मुरली सुना रही थी, उसमें पॉइंट आया था बाबा जैसा कृष्ण का चित्र देखते ऐसा कगिया मारता था, मैं मिचनू बनूंगा मिचनू बनूंगा। क्या सचमुच हम ऐसा देव पद पाने वाले हैं? ऐसा बार बार हमारे अंदर आता है, हमारे बाजू में वो छोला पड़ी है देव पद का, हम साक्षात्कार मुहूर्त का, हम ये स्थूल शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश हो रहे। इसी तरह जब 14 वर्ष भट्टी चला था दादियों का, उसमें ये अभ्यास किया था, हर एक ने ये सुना था मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, ये बार बार वो लोग स्मृति में लाया था। जब बाहर निकलते थे ऐसा समझते थे हम चतुर्भुज चल रहे हैं। इस तरह हम इस संगम युग में अभी हमारा पुरुषार्थ ऐसा चाहिए। तीसरा, ये यहां चारों प्रकार की बातों से, मना चार प्रकार की बातों से मुक्त हुए तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, पुराने संस्कार मुक्त होकर लाइट बनेंगे तो लाइट का साक्षात्कार होगा। चौथा, लंबे समय से फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास होगा तो अन्य आत्माओं को भी साक्षात्कार कराएंगे। पांचवा, जैसे दादी दीदियों ने ज्ञान योग धारणा सेवा में फुल मार्क्स लेकर लाइट कारोबार करते हुए लाइट रहकर संपन्नता को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम संपन्न होकर लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। लंबे समय से कम 8 घंटा चार्ट हो और स्थूल सूक्ष्म के व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ज्यादा ज्यादा 16 घंटा तो रहेंगे तो लाइट के साक्षात्कार मुहूर्त बन सकेंगे। सातवां, सदा आंतरिक पुरुषार्थ और अनासक्त व बेहद की वैराग वृत्ति हो, जरा भी हद का आकर्षण ना हो, सब प्रकार के बोझों से हल्का हो, तब लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। चौथा प्रश्न, वर्तमान समय के प्रमाण आपका कौन सा स्वरूप चाहिए? अब कौन सा पार्ट समाप्त हुआ? कौन सा स्वरूप चाहिए? मगर वर्तमान समय हमारा 1 सेकंड में यहां बैठे भी डिटैच हो जाए। उड़ने का समय है, वो तो उड़ रहे, वो समझे उड़ते, मगर हम इतना है दूसरों को समझ में आ जाए, ये यहां नहीं है। प्रैक्टिकल देखना हो तो हमने कई बार दादी जानकी को, दादी प्रकाशमणि को नजदीक रहने का चांस मिला था, उनको देखा था, जब टोली लेने के लिए जाते थे 1 सेकंड टोली दिया, उसके बाद कोई नहीं है तो दूसरा दादी को देखते थे, एकदम डिटैच होके आश्चर्य होके बैठ जाते, इधर है ही नहीं। हमको याद है जब दादी को या कमर के पास दर्द होता था, बहुत जबरदस्त दर्द होता था, वो 3 दिन दादी कमरे में रहती थी, उस दिन हमने प्रैक्टिकल बाहर गेट के पास बैठा था, डॉक्टर आने वाला था, दादी को हमने मैसेज दिया डॉक्टर आ रहा, तो उस समय वहां डॉक्टर आया, दादी हम उस 1 सेकंड पहले देखा दर्द का महसूस कर रही थी, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर को पूछती है, डॉक्टर हाउ आर यू, हमको हंसे या क्या है, दादी का वंडरफुल है। और कई बार ऑफिस में इतना गंभीर चर्चा चल रहा है, बाहर आके देखे तो दादी का चेहरा दूसरा ही है। माना इतना दादियों ने इतना पुरुषार्थ किया, 1 सेकंड उस कारोबार में, 1 सेकंड उससे ऊपर उठकर, इसके लिए विशेष हमारा अटेंशन अपना पुरुषार्थ के ऊपर चाहिए। जैसा आज का मुरली था, नाम रूप में बसना नहीं, रात को सुना था ना, रात को भाई साहब का क्लास सुना था ना, जरा भी निंचक मात्र भी हमारे अंदर नाम रूप होगा तो वो क्या करेगी, पास करने नहीं देगी, हमारा डाग लग जाएगी। सफेद ड्रेस पे डाट रखो, किसी को भी बोलो सफेद ड्रेस देखो अच्छा लगता है, वो उसका बुद्धियोग उस डाट पे ही जाता है, इसलिए हम इस पे परफेक्ट बनना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने निकाला, वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते स्वयं को योग युक्त पावरफुल हो, योग युक्त स्वरूप से निरंतर योग भट्टी में स्वयं को तपेंगे तो योगेश्वर बनेंगे। स्वयं को तपना होगा एकदम, जैसा जंगल में राम गया था, इसके ऊपर सो बोले तो नहीं, मेरे को घास के ऊपर ही सोना है। अभी दूसरा पॉइंट, अभी स्थूल, अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, अभी निराकारी आत्मा बिंदु रूप, अभी दैवी संस्कार स्वरूप के लंबे समय का अभ्यास होगा तो हमारे मुख से निकलने वाली बोल देवी से या देव से आकाशवाणी समान अनुभव होगा। हमारा जो बोल होगा इस तरह हम अनुभव करेंगे, एक भी शब्द दूसरों को सुनाएंगे तो वो ये समझेंगे ये तो मेरे लिए वरदान है, ये जैसा कोई अव्यक्त रूप से बोल रहा ऐसा अनुभव होगा। तीसरा, ज्वाला रूप योग के लिए अंदर में किसी भी स्थूल सूक्ष्म आकर्षण से परे रहेंगे तो स्वयं को हमें प्रकट हुआ अवतार अनुभव कर सकेंगे। स्वयं को हम प्रकट हुआ अवतार अनुभव करा सकेंगे और दूसरों को भी हमारे बोल महावाक्य अनुभव होगा। वो एक बार 3 दिन का यहां मधुबन में भट्टी हुआ था, मधुबन वालों का भट्टी हो, तो इतना पावरफुल योग था, दादी ने लक्ष्य दिया था और हरेक 2 घंटा योग करना है। एक तरफ से भाइयों के तरफ से लाइन लगता था, दूसरे तरफ से उठ के चले जाते थे। मना ऐसा था वो गीत बजने तक पूरा लाइन क्यू में खड़े होते थे। हमारा सीट पे, जिस सीट पे जो भाई बैठा था उस सीट पे 3 दिन वहीं हर एक का 2 घंटा योग करने का। उसमें ये अनुभव हुआ था, मेरे को याद है, मैं 2 घंटा कैसे बीत गए, 5 मिनट लगा, 2 घंटा 5 मिनट लगा, ऐसी अभ्यास हुआ, ऐसी वातावरण बना था। अभी वर्तमान समय ऐसी पुरुषार्थ चाहिए। हमारे साथ कोई भी बैठा है उसको ये महसूस हो कि ये यहां नहीं है। चौथा, हम ऊपर से अवतरित आत्मा है, इस स्मृति में रहने से हम साधारणता से परे रहकर तीव्र गति की पुरुषार्थी बनकर सदैव विश्व कल्याण के अनुभूति करा सकेंगे। पांचवा, ब्राह्मण जीवन में अपने अंदर छुपे हुए दैवत्व के संस्कार को बार 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 स्मृति में लाएंगे तो दूसरों को वरदानी मूरत का अनुभव करा सकेंगे। हमारे अंदर है, जैसा आग होता है, आग के ऊपर राख आने से क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ता, वो आग है, मगर जब वो राख निकल जाती है वो, मगर बाबा ने हमको क्या बोला, आदि अनादि आपका जो संस्कारी है वो दैवत्व देवी ते आप देव ते, वो बार बार स्मृति में लाना होगा। मैं था, बाबा को क्या था, नशा, मैं वही था मिछनू, मैं वही बनूंगा, उसमें ही अंदर ही अंदर बाबा अकेला है, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा। पांचवा, ब्राह्मण जीवन में अपने अंदर छुपे हुए देवत्व के संस्कार बार बार स्मृति में लाएंगे तो दूसरों को वरदानी मुहूर्त का अनुभव करा सकेंगे। छठवा, अंतर्मुखी की धारणा कर एकरस स्थिति में रहेंगे तो हर आत्मा के प्रति कल्याण का बोल सिद्ध होगा। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा होमवर्क था, पहला 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न था, पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य कौन सा है जिसका विशेष अटेंशन रखना है? हमारा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या कौन सा है? हम क्यों सब पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? घर जाना है, फिर कर जाना है, वापस आना है, हर घड़ी अंतिम कड़ी। हाँ, फिर पुरुषार्थ हम सब कर रहे देवी देवता बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, जीते जी मर गए तब हम पुरुषार्थ। ठीक है, गुड। कुछ पॉइंट्स निकला है इधर, बाबा ने बोला है अव्यक्त फरिश्ता होकर रहना है, यही अंतिम लक्ष्य है। इसमें बाबा ने बोला है कि ऐसा हम करना, अनुभव करना ही, लाइट की कार में मेरा ये लाइट का शरीर है, लाइट की कार में मेरा ये लाइट का शरीर है, ये बाबा ने अनुभव करने के लिए बोला है अव्यक्त फरिश्ता। तो अव्यक्त फरिश्ता के अलावा और क्या क्या हम पुरुषार्थ में कर सकते हैं? एक है बेहद का वैराग, बेहद का वैराग, जैसे हमने ये भी पिछले संडे की मुरली में हमने देखा है, और है नष्ट मोहा से बेहद का वैराग भी होता है, और है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम स्व परिवर्तन करेंगे तब विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो स्व परिवर्तन करना है तो क्या करना है? पुराने संस्कारों को छोड़ना है। जब पुराने संस्कारों का नॉलेज है, हम पहला वो चेक करना है, उसको रिकग्नाइज करने का नॉलेज चाहिए, क्या क्या संस्कार है उसको हम चेंज करें ताकि विश्व परिवर्तन हो जाए। हमारा छोटा संस्कार भी विश्व में, क्योंकि हम आधार मूर्त है, हमारा छोटा सा एक संस्कार के कारण, उसके वाइब्रेशन के कारण वो पूरा विश्व में रिफ्लेक्ट होता है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हम करना है, यही हमारा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य होना है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति किस किस बातों में हम मुक्ति होना है? संस्कारों से मुक्ति, पुराने संस्कारों से मुक्ति, व्यत से मुक्त, संसार से मुक्त, हाँ जी, अननेसेसरी। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए यही हमारा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। और एक मुरली में बाबा ने बोला है कि आपका लास्ट पुरुषार्थ यही होना है, स्नेह स्वरूप बनने के लिए। तो स्नेह स्वरूप बनने से स्नेह स्वरूप से हमको सहन शक्ति मिलता है। सहन शक्ति है तब फाइनल पेपर में हम विश्व को जो विनाश है हम देख पाएंगे। तो स्नेह स्वरूप, बाप समान स्नेह स्वरूप बनने से हमको सहन शक्ति मिलता है। तो स्नेह स्वरूप बनना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण है, ये सब है हमारा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। और दूसरा प्रश्न था, हर कार्य करते हुए किस स्मृति को विशेष बढ़ावो तो निराकारी स्टेज सहज बन जाएंगे। हर कार्य करते समय किस स्मृति को विशेष हम बढ़ाना है? हाँ जी, आदि अनादि वही हूँ, इंस्ट्रूमेंट निमित्त हूँ, फिर अब घर जाना है। और कर्म योग के लिए बाबा ने और क्या क्या बोला है? कर्म करते हुए भी याद बाबा के पास होना है, उसके लिए हम क्या क्या करना है, उसके लिए हम क्या क्या विशेष बढ़ाना है ताकि हम निराकारी स्टेज को हम अनुभव कर सकते हैं। एक है, बाबा ने आंसर में बोला है, मैं फरिश्ता निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट, मैं फरिश्ता निमित्त हूँ, इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पाव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी, और मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आया हूँ, कारोबार पूरी हुई फिर वापस अपने वतन में। इस स्मृति से सहज ही निराकारी स्टेज हम बन जाएंगे। और क्या क्या स्मृति है तो हम निराकारी स्टेज को हम अनुभव कर सकते हैं? एक है ट्रस्टी से हमको ये वो जो हम कर्म करते हैं उसको उसके ऊपर एक लगाव नहीं होता है, ये मैं कर रही हूँ नहीं, तो उसको ट्रस्टी समझना है। और कठपुतली, करण करावन हर बाबा है, तो उससे भी हम डिटैच रहेंगे। और कर्म करते हुए हम स्वराज्य अधिकारी बनना है ताकि तो हमारा वो जो ऑर्गन है सेल्फ कंट्रोल में हम रह सकते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे, क्योंकि कर्म करते समय ही ये सब माया इस दरवाजे से आती है। चलो अच्छा, और लास्ट है डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर करना है। जैसे मूवी में बारिश होने से हम इधर थोड़ी हम भीग जाएंगे, वैसे ही जो भी कर्म हम करते हैं उससे थोड़ा साक्षी होकर देखने से भी हम निराकारी स्टेज को हम अनुभव कर सकते हैं। जो भी है कर्मियों के लिए, जो ऐसा अनुभव करना है उससे हम निराकारी हम बन जाना है। ठीक है, ओम शांति।
इंस्टेंट मेथड, कल्पना बेन, 2 मिनट, दिल्ली अभी दूर है।
ओम शांति। दिल्ली अभी दूर है, ये मुहावरा यूज होता है जब किसी भी काम को करने में अभी टाइम होता है। कहते हैं कि जैसे अभी बाबा ये एग्जांपल यूज करते हैं कि जब जैसा बच्चों का पुरुषार्थ चल रहा है, उस पुरुषार्थ को देख के ऐसा लगता है कि अभी अंतिम, माना अभी सत्युगी राजधानी आने में या अंतिम समय आने में अभी टाइम बाकी है। तो ये ये मुहावरा दिल्ली अभी दूर है, इसका अर्थ यही है कि अभी समय बाकी है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, आराम से करो, समय बाकी है, माना अभी ये होने में समय, माना जिस तरह की स्थिति दिख रही है उससे लग रहा है कि अभी इसको होने में बहुत टाइम है। तो पुरुषार्थ में हम इसको कैसे ले सकते हैं कि हमें पुरुषार्थ करते हुए ये नहीं समझना कि अभी टाइम बाकी है या अभी तो बहुत समय पड़ा है, हमें अपने पुरुषार्थ को उसी रीति से उसी गति से आगे बढ़ाना है।
दो मिनट हुआ नहीं,
ये मुहावरा यूज करना एक तरह का बहाना है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो अंतिम, अभी तो कोई कर्मातीत नहीं बना, अभी अंतिम समय आने में टाइम है। लेकिन हमें कभी भी अपने आप को इस तरह के बहाने देने के बजाय अपने आप के अपनी स्थिति पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें सभी चारों तरफ के लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी लोग अभी कम कर रहे हैं, पीछे हैं, तो फिर हमारे भी, हमारे पास भी बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि हर एक का एग्जाम का टाइम भी हो सकता है अलग अलग हो। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपका अंतिम समय कब आएगा वो आपको नहीं पता है, तो इसलिए दूसरे किसी के पुरुषार्थ को देख के हम ये नहीं समझें कि अभी बहुत टाइम बाकी है। जितना हम अपने आप को दूसरों के पुरुषार्थ से कंपेयर करेंगे या दूसरे किस तरह करते उससे कंपेयर करेंगे तो उतना हम अलबेले।
आपके लिए काम है कि ये सबसे पहले किसने कहा था इतिहास में दिल्ली अभी दूर है, उसकी एक बड़ी कहानी है, वो ढूंढ के लानी। नेक्स्ट श्याम भाई, जॉनी जॉनी जॉनी, यस पापा।
ओम शांति।
पापा ने जॉनी से कहा जॉनी जॉनी, वो कहता है यस पापा,
यस पापा। तो जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा जो कुछ हमें श्रीमत देते हैं हमेशा हाजी का पाठ पक्का होना चाहिए हमारा, किसी भी बात के लिए कभी ना नहीं करना है। जैसे बाबा कहते हैं अगर कोई आपको सेवा भी दी जाती है और अगर आपको वो सेवा नहीं भी आती है तो उसमें आपको ना नहीं करना है। अगर कोई निमित्त जो है आपको सेवा दे रहा है माना, लेकिन उस निमित्त के द्वारा कौन आपसे सेवा कराना चाहता है या कौन आपको वो सेवा दे रहा है, स्वयं बाबा आपको सेवा दे रहा है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मधुबन में भी कहीं पर भी हम देखते हैं तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि इसको इस डिपार्टमेंट में किसने रखा या इसको ये सेवा किसने दी, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि उसको सेवा देने वाला कौन है, स्वयं बाबा है। क्या हम बाबा से ज्यादा जानते हैं कि उस जगह के लिए या उस स्थान के लिए कौन अच्छा निमित्त बन सकता है या रह सकता है? तो जैसे टॉपिक दिया है जॉनी जॉनी यस पापा, तो बाबा ने जो कुछ हमें डायरेक्शन देते हैं या श्रीमत देते हैं सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक, हर बात में हमें हमेशा हाजी का पाठ पक्का होना चाहिए, कभी भी ना नहीं करना चाहिए, और उस बात में या उस डायरेक्शन में कभी भी ये संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये कैसे होगा या क्यों होना चाहिए ऐसे, क्योंकि कई बार हम जो है अल्पकाल की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बाबा उसी चीज को त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखता है। तो बाबा जानता है कि किस बच्चे में कौन सी विशेषता है या कौन से संस्कार है, कौन से गुण है। कई बार यह होता है कि वो संस्कार या गुण जो है दबे हुए होते हैं, लेकिन समय आने पर या उस कार्य को करते करते वो जो है उस चीज में मास्टर बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारी दादियों को या जो भी यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनमें वो विशेषता नहीं थी, वो गुण नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस बात को, डायरेक्शन को हाँ कहा और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो बाबा जो भी हमें डायरेक्शन देते हैं हर बात के लिए हमें हमेशा हाजी का ही पाठ पक्का करना चाहिए, और हाजी का पाठ हम जितना पक्का करेंगे तो एक गुण को लेकर बाकी के भी गुण और बाकी के भी विशेषताएं हमारे अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। ओम शांति।
नए जो है जो यहाँ आए हैं उनमें से कोई श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना।
तो बाबा कहता है कि श्रीमत, बाबा कहता है श्रेष्ठ जो है उसी मत पे हमें चलना है, पर हम लोग क्या कहते हैं मनमत और परमत को जब मिक्स कर लेते हैं तो उल्टी गंगा बह रहा। कहते हैं कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो बाबा ने अभी दो दिन पहले मुरली चलाई थी कि जो संसार है वो बीत चुका है तो उसे आपको एज ए स्वप्न समझना है। तो कहते हैं कि बाबा बच्चे, बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती हैं, तो बाबा ने कहा ये क्यों आई, माया क्यों आती है, क्योंकि हम उसको इमर्ज करती हैं, क्योंकि अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे जो कि 84 जन्मे के हमारी आत्मा में नूंद है,
तो वो जैसे जैसे हमारी वो पट खुलती जाती हैं तो वो आती जाती हैं। और हम जो बाबा की श्रीमत है उसके उस पर ना चल के जो बाबा हमें श्रेष्ठ बनाने आए हैं एज ए लक्ष्मी एंड नारायण, बाबा बोलता है कि जब तुम मेरी श्रीमत पे चलोगे तो लक्ष्मी नारायण बनोगे, पर हम उल्टा चल जाते हैं। तो कहते बाबा ने कहा कि अगर जो श्रीमत पर चलेगा तो फरिश्ता सुदेवता बनेगा, अगर उल्टा चलेगा तो कहते हैं कि बाबा ने कहा कल कहा था कि भले ही भगत हैं मेरे ज्ञान में आई और वो उल्टे चले, तो क्या हुआ कि बाबा को पता है कि बच्चा गलत चल रहा है, तो उनके द्वारा ही भक्तों को साक्षात्कार हुआ, क्योंकि किसी के द्वारा काली का साक्षात्कार हो रहा है और किसी के द्वारा हनुमान का साक्षात्कार हो रहा है। हाँ टाइम बाकी है तो भाई जी आई चेंज समथिंग, वी रिटेन स्पेशल लाइन एंड माई वर्ड इज सो क्यूट। बाबा कहता है कि जैसे फोर सब्जेक्ट हैं हमारी, उसके ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो हमने इसको किया कि ज्ञान, जैसे कि ज्ञान को उल्टा करेंगे तो क्या हो गया न ज्ञान। तो बाबा कहता है अपनी श्रीमत जो बाबा की श्रीमत है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। और सेकंड पॉइंट जो कभी बोला था कि योग, सभी कहते हैं कि बाबा कहता है योग करो योग करो, तो बाबा ने कहा योग का अर्थ क्या है, गयो जो इस दुनिया से गयो। फिर थर्ड है धारणा, कि जब हमारे को ज्ञान होगा तब हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे। फिर धारणा, जब योग होगा तो हम धारणा भी हमारे अंदर होगी। और फोर्थ है सेवा, जब हर चीज की हमारे अंदर धारणा होगी तो हम सेवा में करेंगे, क्योंकि कहते हैं जब सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलता है। और किया तो धारणा डार धा, हाँ तो डार धा, तो कहते हैं नारद हमेशा कहता रहा कि एक बार एक इसकी स्टोरी है कि नारद जी से पूछा गया कि विष्णु जी से वो पूछते हैं कि आपके पास एक डायरी है, वो लिख रहे थे कि आप ये बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं प्रभु जी, तो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं लिख रहे, कि नहीं प्रभु जी दिखा दो। तो देखा कि एक उनमें देखा कि वो ऐसे भगत का नाम लिख रहे थे जो हमेशा उन्हें याद करता है, तो उन्होंने देखा तो देखते हैं कि वहां पे एक किसान का नाम लिखा था, तो वो उसकी एक्टिविटीज को देखने धरती पर आई और देखते हैं वो सुबह उठा अपने बैलों से बोला राम श्याम चलो खेत पर, फिर दोपहर में खाना खाया तो बोलता है कि खाना चलो पानी पीते हैं, फिर शाम को बोलता है अब उन्होंने बोला अरे ये कैसे हो गया आपने इन बस तीन बार नाम लेने से बोला कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ भगत है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक पात्र दिया नारद जी को और कहा इस पात्र में से एक भी बूंद धरती पर ना गिरे और पूरे संसार का आपको चक्र लगाना है और क्या करना है कि और मेरी याद भी निरंतर रहे। फिर चक्र लगाने के बाद नारद जी फिर से उनके पास पहुंचे विष्णु जी के पास, फिर उन्होंने पूछा कि आपने चक्र लगाया कि हाँ, और ऐसा हुआ कि ये बूंद गिरी कि नहीं, तो मेरी याद रही कि नहीं। तो बाबा कहता है कि रटंत विद्या फलंत नाहीं, कि रटने से नहीं हमें मन ही मन याद करना है। ओम शांति।
कमलेश भाई लास्ट, कुमार जीवन की गृहस्थी।
ओम शांति। कुमार जीवन की गृहस्थी, तो एक तो होता है फ्रेंड सर्कल, अलौकिक फ्रेंड्स, लौकिक तो छोड़ के आए लेकिन अलौकिक फ्रेंड्स, फिर दूसरा है साधन, फिर तीसरा है कि गृहस्थी माना क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी जो दिनचर्या में बातें होती है उसमें बहुत ज्यादा समय गवा देते हो, कौन सी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है और कौन सी बात को फटाक से करके निकलना है वो भूल जाता है। तो ये जो गृहस्थी है बड़ी खतरनाक है, जैसे कि रच, तो ये जो गृहस्थी है, गृहस्थी तो माना रचता और रचना, जो रचता होता है उसकी जो रचना होती है उसको पालना करनी होती है उस गृहस्थी को, तो उसके पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। अभी है तो कुमार, लेकिन उस बच्चे के बाप ब्रह्मचारी है, तो ये जो गृहस्थी है कि कैसे हम उसको खुद ही रचते हैं और खुद भी उसमें उलझ जाते हैं, उसकी पालना में जो अनावश्यक चीजें होती है उसमें हम अटक जाते हैं। तो कुमार जीवन में गृहस्थी जो है तो ये साधन है, विज्ञान के जो साधन है वो भी एक बहुत बड़ी गृहस्थी है। और फिर हाँ, जैसे कि अपना सेवा स्थान है वहाँ पर हम बैठे तो है, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं वो छोड़ करके हम अनावश्यक चीजों में ज्यादा टाइम देते हैं। तो हाँ, और अब कुमार जीवन में हाँ, तो गृहस्थी के ऊपर देखो बोझ का टोकरा दिखाते हैं, ओम शांति भवन में भी चित्र है, तो उसके उस टोपले के अंदर उसकी पत्नी, टोकरे के अंदर उसकी वाइफ बैठी है, वो बोलती है कि मुझे गहने हाँ कि मुझे मेरे गहने ला दो, फिर बच्चे बोल रहे कि पापा मुझे टॉफी ला दो, तो ये सब बोझ की निशानियां होती है कि उससे वो क्या हो जाता है, थक जाता है बिल्कुल, और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ पहुंच नहीं पाता है। वैसे भी कुमारों के भी सिर पर जो ये टोकरी है और उसके अंदर जो और इच्छा रूपी और दूसरे मोबाइल लैपटॉप ये सब स्थूल बातें भी है, तो इनसे कैसे हम सिर पर लेकर घूमते हैं। प्रैक्टिकल में कोई बोझ तो है नहीं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, लेकिन जिस लक्ष्य की तरफ हमें जाना है पंख लगाकर, हल्का बनकर, डबल लाइट बनकर, तो ये डबल लाइट बनने नहीं देती है गृहस्थी। तो इस गृहस्थी से कैसे दूर रहना है ये तो आज की मुरली में बहुत अच्छे से
ट्रस्टी
बनना है। और गृहस्थी करते करते अगर परमार्थ करेंगे तो उस गृहस्थी में से भी हम डिटैच होते जाएंगे। परमार्थ शब्द का अर्थ है कि स्व के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण उसमें समाय होता है, इसके लिए हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा।
अच्छा, अभी रुकना मुश्किल है। ओम शांति। जिसको भी जो जो टॉपिक दिए गए थे वो अभी इस इन्हीं टॉपिक पर प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है? क्या क्या टॉपिक्स थे, जिनको जिनको टॉपिक्स अगले जो क्लासेस होंगे अपने अपने इस टॉपिक का, अभी तो बिना सोचे डायरेक्ट ये किया। यहाँ कितने हुए, एक तो जॉनी जॉनी यस पापा, श्रीमद की उल्टी गंगा, गृहस्थी जीवन और ये दिल्ली दूर है। तो ये चार टॉपिक्स पर आप चार लोग तैयार करके रखेंगे, आगे कभी भी अचानक फिर इसके ऊपर पूछेंगे। ओम शांति।